राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण। आप धन्यवाद करते हैं पुनीत जी, मुरलीधर और परिवार का, जिन्होंने प्रेम से सबको अपने घर में भगवान के इस कथा और कीर्तन के लिए अवसर दिया है। भगवद गीता भगवान का गीत है और गीत सुख और शांति प्रदान करने के लिए होता है। गीत रोने धोने वाले को खुश करने के लिए होता है, इसीलिए गीत गाया जाता है कि आदमी दुखी है वो सुखी कैसे हो जाए। और सुखी आदमी तो जीता जी होगा तब होगा, मरने के बाद सुखी होने की बात तो है नहीं। आदमी जब जीवित है तभी उसको सुखी होना चाहिए ना। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि गीता की शिक्षा जीवित लोगों के लिए है और सुखी करने के लिए है। ठीक है, ये पहली दो लाइन है। गीता की शिक्षा जीवित लोगों के लिए है, सुखी करने के लिए है, मरने के बाद पढ़ने के लिए नहीं है। जिसको प्रायः लोग मरने के बाद पढ़ते हैं, तो इसका ये उद्देश्य नहीं है। इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे भगवद गीता से। पांचवें अध्याय का 23वां श्लोक है। पांचवें अध्याय का 23वां 23, इसका उद्देश्य यही है कि गीता जीवित लोगों के लिए है और सुखी करने के लिए, और सुख का साधन क्या है। निकाल लिए सबने? 5:23, नीचे गीता नहीं रखनी चाहिए कभी भी धरती पे, हमेशा कपड़े के ऊपर या ऐसे तो बहुत सम्मान के साथ रखना चाहिए। शक्नोति है यह शोरुम,
शक्नोति है यह शोरुम,
प्राक शरीर विमोक्षणात्,
शरीर विमोक्षणात्,
काम क्रोध उद्भवं वेगम,
काम क्रोध उद्भवं वेगम,
संयुक्त ससुखी नरः,
संयुक्त ससुखी नरः।
शक्नोति, शक्नोति का अर्थ होता है जो कर सकता है। शक्नोति तो साधारण हिंदी में है ना, क्या ये हो सकता है क्या, तो शक्नोति जो कर सकता है। यह इस दुनिया में, यह का मतलब इस दुनिया में, नहीं तो कहना चाहिए मरने के बाद नहीं, यह इस दुनिया में। शक्नोति यह शोरूम का अर्थ होता है जो सहन कर सकता है, बर्दाश्त करना या सहन करना। शक्नोति यह शोरूम जो इस दुनिया में सहन कर सकता है। क्या सहन कर सकता है? काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से जो वेग उत्पन्न होता है उसको सहन कर सकता है। प्राप्त शरीर विमोक्षणात्, प्रकृति से दिए हुए शरीर को मरने से पहले, मतलब जीते जी। प्राप्त शरीर विमोक्षणात् मतलब जब तक ये शरीर समाप्त नहीं होता उससे पहले, इसका मतलब जीते जी इस दुनिया में जो काम और क्रोध के वेग को सह सकता है। सस युक्त ससुखी नर, वो नर सुखी है और वो ही भगवान से जुड़ा हुआ है। सयुक्त, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, जैसे ना युगल मूर्ति मतलब जुड़ी हुई मूर्ति, युक्त का मतलब बहुत जो जुड़ा हुआ है। तो अब हमारे लिए चैलेंज क्या है कि काम और क्रोध के वेग को रोकना है तब हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन उसको रोकने के लिए हमको सहारा क्या लेना पड़ेगा? भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा। संयुक्त, जब संयुक्त होगा तो सुखी होगा। तो अब ये प्रश्न उठा, ये काम क्रोध का वेग आता कहां से? काम क्रोध का वेग आता कहां से हमें मालूम हो? जहां से आता है उसको रोके ना। तो काम क्रोध का वेग आता है, कामेश क्रोध से रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से आता है। और रजोगुण का अर्थ क्या है? रजोगुण क्या होगा? रजोगुण में आदमी क्या करता है? रजोरागात्मक तृष्णासंग बंधनात्, लोभ रजोगुण की पहचान है। रजोगुण की पहचान है लोभ, और लोभ के लिए जितनी भागा दौड़ी करते हैं इधर से उधर, इससे आगे निकल जाना है, उसको पीछे छोड़ना है, ये रजोगुण की पहचान है। रजोगुण की ये पहचान है। लोभ का मतलब मुझे ये चाहिए, ये कामना हो गई, और जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है, और ये दोनों वेग में आते हैं। वेग का अर्थ क्या होता है? वेग का अर्थ होता है कि इतनी तेजी से आती है कि उसको आप रोकने में समर्थ नहीं हो अपने आप। जैसे सुनामी आती है तो उसको रोका नहीं जा सकता है, ये वेग है। समुद्र का वेग हो गया, वायु का वेग होता है इतना, तूफान की तरह इसको वेग बोलते हैं। तो इन वेगों को रोकना बहुत सरलता नहीं है, इसलिए भगवान का सहारा लेना पड़ता है। छोटा मोटी कोई काम होता तो हम अपने आप उसको रोकने का प्रयास कर सकते थे, नहीं तो संयुक्त न लिखते भगवान, सुखी न लिख देते। काम करो तो रोको, सुखी हो जाओ, लेकिन आप नहीं रोक सकते हो, ये संभव नहीं है ऐसे। तो इसलिए काम और क्रोध उत्पन्न रजोगुण से होता है, इसका मतलब हमको रजोगुण से ऊपर उठना चाहिए। तमोगुण की बात ही नहीं की जा रही है यहां। तमोगुण वाला मवाल यह नशा पी के कहीं पड़ा होगा, उसको दुनिया का भी पता नहीं है कैसे चल रही है, वो तो नीचे के स्तर का हो गया। लेकिन जो लोग बिजनेस में बहुत तेजी से तीव्रता के साथ काम करके सुबह से शाम तक भागा दौड़ी कर रहे हैं, वो रजोगुण में है, और उसी में ही काम और क्रोध की उत्पत्ति सुबह से शाम तक होती रहती। अब कैसे इसको हमको सतोगुण की तरफ जाना चाहिए, एक स्टेप ऊपर उठना चाहिए, सतोगुण में जाना चाहिए। सतोगुण में जाने से हम भगवान के निकट हो जाएंगे, संयुक्त की तरफ चले जाएंगे। तो कम से कम इस धरती के ऊपर रहते हुए मानव को सतोगुण के स्तर के ऊपर आने का प्रयास करना चाहिए। जीते जी तमोगुण से ऊपर के उठ के, रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण के स्तर के ऊपर आने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण बनाने के लिए आया हूं, क्योंकि ब्राह्मण सतोगुण में होता है। उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य ही संस्था का केवल सतोगुण में स्थापित करना है मानव जाति को, ताकि वो सुख प्राप्त कर सके, दुख से मुक्त हो सके। उद्देश्य ही केवल सतोगुण के स्तर के ऊपर मानव को लाने का। सतोगुण में सुख है, सतोगुण के लिए भी लिखा है सुख है, सुखाद बंधन आती, उसमें सुख भी बंधन का कारण है लेकिन है सुख। सत्वम सुखे संजायते, सतोगुण में सुख मिलता है। सत्वम क्या है? सतो सुखम संजायते, सत्वगुण की संज्ञा ही सुख है। तो पहले हमको सतोगुण में आने का अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और सतोगुण वाला व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं? पहले तो सुबह सवेरे उठने का उसका नियम होता है, ये सतोगुण की पहली पहचान है। सूर्य उदय से पहले उठने का नियम बनाना, ये सतोगुण के आदमी की पहली पहचान है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये पुरानी कहावत है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अभी आपको तीनों चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, वाइज चाहिए, तो कम से कम सुबह उठने की आदत तो करनी चाहिए। अब रजोगुण की यह पहचान है कि सुबह सवेरे उठने की आदत लोगों में है नहीं, और क्योंकि देर से उठने से सारा दिन क्रोध में रहते हैं, काम पूरा होगा नहीं, देर से उठेगा तो क्या करेगा, झगड़ा ही करेगा, और क्या करेगा। ये बहुत सरलता से समझने में आने की चीज है। आप अगर अपने टाइम से पहले नहीं उठो, वो किचन में रोटी तैयार टाइम से नहीं की भोजन, तो क्रोध आएगा ही ना, तो सामने वाले को आएगा, आपको भी आएगा। कभी आपको बच्चा देर से उठता है तो आपको क्रोध आता है कि नहीं आता? अभी तक उन्होंने पड़ा हुआ है। तो पहले सवेर उठना ये सतोगुण की पहली प्रारंभता है जीवन की। वेदों में लिखा है सूर्य उदय होने के बाद जो दांतन मुंह में डालता है कुत्ते की पूछ डालता है। वेदों की भाषा बहुत कड़ी है। सूर्य उदय के बाद दांतन मुंह में डालने वाला कुत्ते की पूछ डालता है। तो एक दगड़ा में ऐसे बोला तो बोला हम तो शाम को सूर्य अस्त के बाद ही दांतन करते हैं। उसके लिए वेद, उसके लिए ऋषियों को ध्यान भी नहीं था कि ऐसे भी कोई हो सकते हैं, नहीं तो कुछ लिखते के सुअर की पूंछ होगी। उन्होंने इतना लंबा सोचा ही नहीं था। और मैंने देखे बहुत से लोग शाम को ब्रश करते हुए, तो 7:30 बजे तक। तो सवेल उठना पहली सतोगुण की प्रक्रिया है, और फिर सतोगुण में संयुक्त सतो सवेल उठ के पहले क्या करना चाहिए, भगवान से जुड़ने का, युक्त होने का, मतलब उसके साथ बैठने का अभ्यास करना चाहिए। भाई सुख कहां से आएगा, जिसके पास होगा उससे आएगा ना, तो सुख का स्रोत है कौन, आनंदमय विग्रह है भगवान, आनंद का स्रोत है। आनंद कहां है, आनंद भगवान के पास है, सच्चे आनंद विग्रह, वो आनंद का स्वरूप है, उसके उससे आनंद ही बिखरता रहता है, सुख ही निकलता रहता है। तो उसके पास बैठेंगे तब सुखी होंगे ना, जो सुखी है उसके पास बैठेंगे तब सुखी होंगे ना, ये तो सीधा सा संसार का नियम है। जिसके पास बैठोगे, आग के पास बैठोगे तो ताप मिलेगा, और भगवान के पास बैठोगे तो सुख मिलेगा, उसके बाद है ही सुख। भगवान के पास बैठना सुख मिला, लेकिन जैसे हमने कहा पहले सवेल उठने का मतलब, सुबह सूरज उगने से पहले वाले समय को उषा बोलते हैं, उषा का समय बोलते हैं उसको, वो ठंडा होता है उसको, ठंडक होती है उषा, इसलिए उषा वाले ने पंखे बनाए, हमारे पंखे बहुत ठंडे हैं, आपको ठंडक पहुंचाएंगे, उसको उषा बोलते हैं। उषा देवी है, वो सूर्य उगने से पहले अपने रथ के ऊपर सुख शांति संपत्ति स्वस्थ सब लेके बांटती जाती है, जो उठता है उसको देती, और निकल जाने के बाद जो उठता है वो तो गाड़ी निकल गई, उसी वक्त ये सब चीजें बढ़ती हैं। उषा सूर्य उगने से पहले का समय है, ये तो वो संसार के लोगों की आवश्यकता है। उषा के आने से पहले अमृत वितरण होता है, वो अमृत वेला है, जो 1.5 घंटा सूर्य उगने से पहले उस समय को कहते हैं अमृत वेला, उसका नाम ही अमृत वेला है एक भाषा में। अमृत वेले का मतलब उस वेले उस समय में अमृत की प्राप्ति होती है। और उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जैसे हम सब मुहूर्त निकालते हैं, विवाह का मुहूर्त है कि घर प्रवेश का मुहूर्त है, उस वक्त ब्रह्म का मुहूर्त है, मतलब भगवान को पाने का समय है, उस मुहूर्त पे भगवान के साथ भेंट होती, और भगवान के साथ भेंट होने को ही अमृत जीवन बोलते हैं या अमृत बोलते हैं। अमृत उस वेले को अमृत वेला इसलिए कहते हैं कि उस वक्त भगवान के साथ भेंट होती है। तो सवेले उठना और उस वक्त बैठ के भगवान से भेंट करना, तो भगवान से भेंट कैसे करें, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कल युग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार लिया है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है, तो भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो ये नाम के साथ भेंट हो गई, सुबह उठ के संयुक्त हो गए, और उसका रिजल्ट होगा, उसका परिणाम क्या होगा, स सुखी नारा, वो व्यक्ति सुखी है। ये नहीं कहा कि वो ब्राह्मण सुखी है या वो सन्यासी सुखी है या वो हिंदुस्तानी सुखी है या वो अमेरिकन सुखी है, ऐसे नहीं बोला है। भगवान की भाषा सबके लिए होती है, सब समय के लिए होती है, सब जगह के लिए होती है, इसलिए स नारा बोल दिया। नर का मतलब है जिसको नारायण प्राप्त करने की क्षमता हो, स्त्री और पुरुष नर का अर्थ नहीं है, नर का अर्थ है जो नारायण को प्राप्त करने में सक्षम हो, मतलब जो भगवान प्राप्ति के अधिकारी है उसको नर बोलते हैं। तो इसलिए पशु और नर ये श्रेणियां हैं, स्त्री और पुरुष हो गया, नर का अर्थ है पशु और नर। नर केसरी, नरसिंहदेव को बोलते हैं नर, मतलब मानव, केसरी शेर को कहते हैं, उसके बाल जो सुनहरी होते हैं वो केसर जैसे बाल होते हैं, तो नरसिंहदेव का नाम है नर केसरी। तो आधा नर जैसा है, मानव जैसा है, आधा पशु जैसा है, तो इसका अर्थ हुआ नर का मतलब है मानव, जिसमें नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को जानने की, उससे मिलने की उसको प्राप्त करने की भगवान ने क्षमता दी है, बाकी किसी में ये संभावना नहीं। तो ये संदेश भगवत गीता का कि ये जीवित लोगों को सुखी होने के लिए काम क्रोध के वेग को रोकने का अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास कैसे करना पड़ेगा? भगवान के साथ सवेले उठकर भेंट करने का अभ्यास करने से काम क्रोध के ऊपर के वेग को रोकने का संभावना है। ये बात समझ में आ रही है? लॉजिकल लग रही है कि नहीं लग रही? सुबह सवेले आदमी अगर अच्छे मूड में है तो सारा दिन अच्छा होता है। कभी आदमी अच्छे मूड में ऑफिस नहीं जाता तो लोग कहते हैं क्यों भाई, घर से लड़के आए हो का मतलब? सुबह सवेरे कहीं झगड़ा हो गया क्या? यही कहते हैं कि सुबह से ही तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो इसका मतलब सुबह सवेरे ही आदमी अगर प्रथम जीवन का जो क्षण है उसको सुखी बना दे तो सारा दिन सुखी हो जाएगा। और पुराने जमाने के लोग सायंकाल को सोने से पहले, रात को सोने से पहले फिर भगवान को प्रार्थना करते थे। अब हम सोने जा रहे हैं तो मरने के समान है, अब सारी रात हमारी देखभाल कौन करेगा? आप ही तो करेंगे भगवान। और सुबह समय से हमको उठाने के लिए घड़ी की जरूरत नहीं है, आप हमारे हृदय में हैं, आप जगाना चाहें तो जगा सकते हैं। घड़ी तो बजती है तो हमारा हाथ उसके ऊपर बटन के ऊपर जाता है बंद करने के लिए। तो आप हमें सुबह आपको प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देके जगा देना। तो सोने से पहले भी प्रार्थना करना। हम तो पुराने जमाने में देखते थे अपने वो सारे संसार को सुखी करना, भगवान हमारे ऊपर कृपा करना, हम आपकी स्मृति बनाए रखें, ये लोग रात को सोने से पहले प्रार्थना करते थे। तो जागते समय भगवान की प्रार्थना करना और सोने से पहले प्रार्थना करना, इन दो के बीच में सारे दिन की सारी समस्याएं ऐसे बिल्कुल चिपक के छोटी हो जाएंगी जैसे सैंडविच बन जाता है। डबल रोटियां मोटी मोटी होती हैं बर्गर की, बाकी सब सामान अंदर दब जाता है। सारे दिन की परेशानियां चिंताएं उसके बीच में अपने आप दब जाएंगी अगर ये दो टाइम हम अपना, वैसे वेद ने त्रिकाल संध्या लिखा है। सत्वगुण का व्यक्ति तीन काल की त्रिकाल संध्या करता है। तीन काल जिसको संध्या का काल कहते हैं, उस वक्त संयुक्त होना चाहता है। संध्या कहते हैं संधि को जो जोड़ता है। सुबह की संध्या का अर्थ है सूर्य उगा नहीं है, तारे आसमान से छुप गए हैं। तारे छुप गए, सूर्य नहीं उगा, उसका नाम है प्रातःकाल संध्या। सायंकाल को सूर्य अस्त हो गया, तारे आसमान में नहीं आए हैं, इसको कहते हैं सायंकाल की संध्या। और मध्याह्न का समय जब एएम पीएम में परिवर्तित होता है उसको कहते हैं मध्याह्न काल संध्या। और संध्या का अंतरंग अर्थ ये है जीव का संबंध भगवान के साथ स्थापित करने का समय। संध्या का ये परिभाषा है, संध्या का मतलब दोनों को जोड़ना। तो जीव को भगवान के साथ हाथ मिलाने का ये समय है। ये तीनों समय जो है ये समय संध्या का समय कहलाता है। कि जो हमारी जो 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 भगवान के हम अंश हैं, जो भगवान के साथ जुड़ा होना चाहिए हमको, उसकी सेवा में संलग्न रहना चाहिए गोविंद की, वो हम इस संसार में भगवान की सेवा छोड़ के काम क्रोध के पुतले बन के उसकी सेवा में लगे हुए हैं। ये तीन टाइम में कम भगवान से जुड़ने का प्रयास और अभ्यास करेंगे तो फिर हम भगवान से नित्य जुड़े रह सकते हैं। ये हमारे वेदों के ऋषियों का दृष्टिकोण है, इसलिए त्रिकाल संध्या का नियम बना रखा है। त्रिकाल संध्या और त्रिकाल संध्या में गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था, उसका नाम ही संध्या मंत्र है। उसका नाम ही संध्या मंत्र है। और वो जपने का अधिकार केवल सत्वगुण में स्थित ब्राह्मण को है और किसी को नहीं। जो सत्वगुण में स्थित है वही उसका अध्ययन कर सकता है, उसका तीन काल से। इसका मतलब त्रिकाल संध्या करने का अधिकारी वही है जो सत्वगुण में स्थित है। बाकी कोई किसी वक्त भी जप ले उसमें क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई परिवर्तन जीवन में नहीं आता है। सत्तो गुण में स्थित व्यक्ति संध्या वंदन करता है, ये उसका नेम होता है, इसलिए वो सुखी रहता है। फिर उसके पास संसार का कोई भोग विलास की चीजें नहीं है तब भी वो सुखी। साधु के पास क्या होता था, एक कुटिया होती थी घास की, एक मटका पानी का होता था, वो भी शाम को गिरा देते थे, फिर नया भरते थे, और सारे राजा महाराज उनके पास चरणों में जाके कहते हैं हमारे को आशीर्वाद दीजिए हम सुखी हो जाए। आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास आशीर्वाद लेने जाते हैं कि हमको सुखी बना दो। इसका मतलब सुख कोई बाहर के संसार की सामग्री में नहीं, सुख उसके पास है जिसके हृदय में भगवान विराजमान है। जो भगवान से जुड़ा है वो सुखी है, और भगवान से बिछड़ा हुआ दुनिया का मालिक भी दुखी है। देखा दुनिया में न कोई सुखी है, रोए राजा रियासत का, रोए उसकी रानी, देखा जगत में न कोई सुखी है। है कोई सुखी दुनिया में? राजा भी दुखी है, रानी भी दुखी है, पंडित और पंडितयानी भी दुखी है। ये संसार ऐसा बना हुआ है, जब भगवान से कोई नहीं जुड़ा है तो सुखी नहीं हो सकता। संयुक्त ससुखी नर, और कोई सुखी होने का साधन है ही नहीं। भागवत में एक जगह लिखा है कि इस धरती से नीचे के लोग हैं ना, सूतल लोग जिसमें बलि महाराज रहते हैं, तलातल लोग, मय दानवादी जिसमें रहते हैं, उनके पास इतनी सुख सुविधा है। और प्रभुपाद जी ने लिखा है एक लैंग्वेज में, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका, लेकिन उनको कहते क्या है, डीमंस। कहते हैं उनको क्या है, डीमंस। जो परिभाषा देख लीजिए ना, नीचे के लोगों में सुख और सुविधा स्वर्ग से भी ज्यादा है। उसका नाम है बिल्व स्वर्ग, उन लोगों को कहते ही बिल्व स्वर्ग है। बिल्व क्यों कहते हैं, बिल में रहने वाले, जैसे जैसे सांप होता है ना, बिल्व का मतलब बिल में रहने वाला, बिल तो नीचे बिल है ना, धरती के नीचे जो भी खोद के जाएगा वो बिल में ही जाएगा ना, तो उसको बिल्व स्वर्ग बोलते हैं। उसमें सुख सुविधाएं इतनी ज्यादा है कि उतनी इंद्र के पास भी स्वर्ग में नहीं है। तो लिविंग स्टैंडर्ड उसका बहुत हाई है, लेकिन उनको फिर भी डीमोनिक कहते हैं। और इसकी परिभाषा यह है, जितना लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करोगे उतने डीमोनिक मेंटेलिटी बढ़ती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। और बिल में रहने का दूसरा अर्थ है कि दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, जो हमें करना है हम अपने आप करेंगे। इसका अर्थ ही है कि सुखी वो है जो संतोषी है। कोई संतोषी इस दुनिया में सुखी है, और संतोष किसके पास है, शांताकारम भुज विषयनम, वो शांत है, और तो कोई शांत है नहीं संसार में। उसका नाम ही, पहला शब्द ही उसका है शांताकारम। उसका आकार मतलब उसका रूप ही शांत है, आकार का मतलब रूप, वो है ही शांत। भगवान विष्णु शांत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं सदा, वो आनंद में शांत में निद्रा में होता है, तो इसलिए भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। वो शांत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए है कि वो मुस्कुराते रहते। स्मित चित्त, उसको देखने से हमारा चित्त मुस्कुराने लगता है। तो यह श्लोक भगवद गीता का, जीते जी सुखी होने का साधन काम क्रोध के वेग को सहन करने का अभ्यास करना है। इसलिए काम क्रोध उत्पन्न होता है रजोगुण से, इसलिए हमको रजोगुण से उठ के सत्वगुण के स्तर के ऊपर आने का अभ्यास करना पड़ेगा। और सतोगुण के अंदर आने के लिए पहली उसकी प्रणाली सवेल उठने का नियम बनाना है, और उठ के भगवान के साथ बैठ के सुख का संयुक्त बन के उनसे सुख का कहा जाए भगवान से इन दो काम और क्रोध के सहने की शक्ति मांगनी चाहिए। भगवान हमको शक्ति दीजिए कि इस वेग को हम सह सके। वैसे तूफान आए तो उसके वेग को सहने का क्या साधन है सबसे अच्छा? तेज तूफान सामने आता है तो क्या करना चाहिए? नीचे बैठ जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए, बिल्कुल सर ही धरती के ऊपर डाल के लेट जाओ तो तूफान ऊपर से गुजर जाएगा ना? नहीं, इसका मतलब निम्रता दूसरा अति आवश्यक गुण है सुखी होने का। वेग को से बचने के लिए निम्रता आएगी तभी वेग से बच पाएंगे। ऐसे डंडे की तरह खड़े रहेंगे तो वो वृक्ष जो बहुत कड़े होते हैं तूफान में गिरते हैं, लेकिन जिनमें झुकने की जिसमें शक्ति होती है तूफान आएगा झुक जाएंगे, तूफान जाएगा फिर खड़े हो जाएंगे। तो दूसरा बहुत अति आवश्यक अंग है निम्रता, वेग से बचने के लिए। जीवन में निम्रता आएगी वो जो पहला था वो सहनशीलता थी, षोडंकार था सहनशीलता, काम क्रोध के वेग को सहने की शक्ति सहनशीलता है, और सहनशीलता के साथ जब निम्रता होती है तब चेतना महाप्रभु की ये शिक्षा अपने आप में सार्थक होती है। तृणादपि सुनिश्चय न तरोरपि सही सुनन, तरोरपि सही सुना, सहनशीलता कितनी वृक्ष जितनी। सर्दी है, गर्मी है, तूफान है, आंधी है, वर्षा है, सबको सहन करता है, लेकिन फिर भी सबको छाया भी देता है, स्वयं तपता है दूसरे को छाया देता है, स्वयं भीगता है दूसरे को आश्रय देता है, स्वयं कटता है दूसरे को लकड़ी देता है, फल देता है, कुछ भी करे। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम को लक्षित करके ग्वाल बालों को कहते हैं ये वृक्ष संसारी लोगों से अच्छे हैं, सबको सब कुछ देते रहते, ब्राह्मणों से भी अच्छे हैं। ये वहां लक्षित करें क्योंकि इसके बाद ब्राह्मण नहीं दे रहे हैं भगवान को भोजन, उससे पहले ये भगवान भागवत में बलराम जी को लक्षित करते हैं, देखो तो वृक्ष कितने उदार हैं, जो चाहे उसको जो चाहे वो देते रहते हैं, पत्थर मारो तो फल दे देते हैं, पत्थर मारो तो वो बेर नीचे गिरेगा, बच्चे बेर पत्थर मार के उतारते हैं लेकिन देता है, काटो तो लकड़ी देता है, कितने सहनशील है, कितने उधार हैं। ये भगवान श्री कृष्ण वृक्षों की प्रशंसा करते हैं। इसका अर्थ है जो सहनशील है उसको वो भगवान के लिए प्रसन्न है, उसको भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नरसिंह देव भगवान जब प्रकट हुए तो प्रहलाद को कहा आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, मुझे माफ करना, क्षमस्व माम, मुझे माफ करना, आपने इतना सारा मेरे लिए कष्ट सहा है। लेकिन जिसका अर्थ है जो सहनशीलता रखता है भगवान उसके लिए रक्षा का सारा प्रबंध करने का दायित्व अपने ऊपर ले देते हैं, एक का नहीं 21 पीढ़ियों की जवाबदारी ले ली। नरसिंह देव को कह दिया प्रहलाद को तुम्हारी अकेले की नहीं, तेरी 21 पीढ़ियों की, भविष्य में आने वाले तुम्हारी 21 पीढ़ियों की रक्षा करना, और कभी उनका बाल बांका होने में नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मेरे लिए कष्ट सहा है। तो भगवान को प्रिय वो है जो सहनशील है। क्रोधी किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगता है? हमको एक जगह हमने कहीं सत्संग कर रहे थे, हमने बोला जब क्रोध आए ना तो सीधे शीशे के सामने जाके खड़े हो जाना, अपने चेहरे को देखना कि आपको कैसा लगता है, अब जाके देख लेना कभी अनुभव करने के लिए। और फिर ऐसे हमने कह दिया कि जब किसी को क्रोध आए तो उसको शीशा दिखाना। दूसरे दिन एक माँ ने कहा मैं बच्चे को डांट रही थी, वो अंदर से आईना लाया मेरे को दिखाने के लिए और मेरे को हंसी आ गई। क्रोध में जो हमारा कुरूप होता है उसको हम भी पसंद नहीं करते, हमारे प्रेमी भी पसंद नहीं करते। क्रोध में पिता को बेटा पसंद नहीं करता है, पति को पत्नी पसंद नहीं करती। क्रोध में क्रोध का चेहरा पसंद आता है? हाँ जी, ये नहीं कह रही तो आपको नहीं करना चाहिए ना। आप ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? क्रोध में कोई अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्रोध जब हमको ही अच्छा नहीं लगता है तो भगवान को कहां से अच्छा लगेगा? एक क्रोध शब्द होता है, एक क्षोभ होता है। क्षोभ का मतलब है वो ऐसा है जैसे नारद जी जाते हुए सांप को कहा किसी को काटना मत। अब नारद की आज्ञा मानकर सांप इतना शांत हो गया, बचे उसको पत्थर मारे। जो पत्थर मारे तो फटा हुआ जगह जगह से कटा फटा हुआ सांप को नारद देगा, तुम्हारा ये हाल कैसा? बोला महाराज की आपकी आज्ञा से इतना सहनशीलता होगी कि लोग आते जाते पत्थर मारते। बोला मैंने कहा काटना मत, मैंने ये थोड़ी कहा छुटकारना मत, छुटू करते रहना काटना मत। तो क्षोभ का मतलब है छुटू करते रहना लेकिन काटना मत। तो माता पिता जब बच्चे के ऊपर डांटते हैं वो क्षोभ कहलाता है, वो क्रोध नहीं कहलाता। क्रोध का मतलब दूसरे को हानि पहुंचाना, क्षोभ का मतलब दूसरे की भलाई के लिए उसकी ताड़ना करना। तो दोनों में अंतर। तो क्रोध ही किसी को पसंद नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं उसको सहने का अभ्यास करो। कैसे क्रोध को सहें? उसके लिए संयुक्त, उसके लिए रास्ता भगवान ने बताया, भगवान से जुड़े रहो तो तुम्हारा क्रोध आस्ते आस्ते शांत होने लगेगा। जितना तुम भगवान के निकट जाओगे उतना क्रोध तुमसे दूर जाएगा। ये रेसिप्रोकल है। वैसे भी जो सारा दिन मानो अभी ये प्रैक्टिकल नहीं है जनरली बट बात कर रहे हैं, जो सारा दिन मंदिर के अंदर भगवान की सेवा में सुबह से शाम लगा रहता है उसको क्रोध करने के बाद समय कहां है? उसके पास क्रोध के लिए समय है ही नहीं। तो जितना भगवान के निकट ज्यादा जाएंगे उतना क्रोध और काम से दूर होना संभव है। तो ये संयुक्त का अर्थ है, आस्ते आस्ते। युक्त का मतलब निकट जाना। निकट आदमी जाता है क्या? निकट किसको जाना कहते हैं? जो सेवा में लगता है उसको कहते हैं मेरे को। भाई तुम्हें कौन प्रिय जो मेरी सेवा करता है? भाई कौन सा बेटा तुम्हें अच्छा लगता है बोलो जो मेरी सेवा करता है? वही मुझे प्रिय है, वही मुझे निकट में दिखता है जो मेरी सेवा में है। सीधी सी बात है। आपको कौन अच्छा लगता है बच्चा? आपने चार तीन चार भगवान दिए हो तो कौन सा बच्चा अच्छा लगता है किसी से पूछा? तो जो सेवा करता है वो अच्छा लगता है, सीधी सी बात। और जो सेवा कैसे करेगा? जब निकट में होगा तब सेवा करेगा ना, जो पास में होगा तब सेवा कर पाएगा ना। तो युक्त का अर्थ है निकट में रहकर भगवान की सेवा करना, लेकिन वो भी प्रेम से। सेवा तो नौकर भी करता है, नौकर भी रोटी पकाता है और मां भी रोटी पकाती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दिन रात का अंतर है। जो भावना मां की रोटी पकाने में है कि मेरा बेटा रुष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ उसका अच्छा हो, ये नौकर के रोटी पकाने में तो नहीं है ना। मेरे को 300 रुपया मिलता है मानो तो ठीक है, मेरे को 10 रोटियां पकाना इससे ठीक है, 11वीं मांगते हैं इसके पैसे थोड़ी देते हैं। वो तो कैलकुलेशन करेगा दिमाग में और मां कहेगी कि 11 आज एक ज्यादा खा रहा है मेरा बेटा, तो आज ही और भी दे दूं तो अच्छा है, उसका भाव ऐसा होगा। दोनों में अंतर है। तो प्रेम से सेवा, ये निकट का अर्थ है और युक्त का अर्थ है। इसलिए घर में भगवान को स्थापित करते हैं कि निकट से हम उसकी सेवा कर सके। मंदिर में जाके करते हैं वो थोड़ी दूर की सेवा हो जाती है। इसलिए कलयुग के अंदर निकट की सेवा का विधान है। मंदिर का विधान असल में द्वापर युग का था और वैसे भी सब लोग रोज मंदिर जा ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। आजकल के जिस युग में हम रह रहे हैं रोज मंदिर का दर्शन करने जाने वाले बहुत कम लोग, संभव है सबके लिए। कोई घर में है पड़ोस में है आते हुए जा रहे, लेकिन घर में तो सब कर सकते हैं ना। इसलिए हरेक को युक्त होने के लिए दूसरा विधान सवेल उठने के साथ घर में भगवान को विराजमान करना है। वैसे घर में बड़ा बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग होता है, उस घर में नेम अच्छे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बोलना जरा नीचे बोलना होता है कि नहीं होता, ये देखा है कभी? कम से कम स्त्रियां आस्ते बोलती हैं उस घर में, ये सच है कि नहीं? तो झगड़ा कम होता है ना, उसका अर्थ यही है, कम बोलेगा तो कम झगड़ा होगा। तो बड़ा होना घर में अति आवश्यक है, ये पुराने वृद्ध लोगों का कहना। तो सबसे बड़ा कौन है? भगवान है। सबसे बड़ा घर में बिठा दो, सब कुछ शांति हो जाएगी भाई, सबसे बड़ा तो वही है ना। और बड़े का ही पहले सम्मान किया जाता है, ये हमारी मर्यादा है, तो भगवान को घर में विराजमान कर दो। भगवान घर में है तो सबसे बड़ा वो है, और निकट में सेवा करने का भी हमको अवसर मिल गया, और उन और घर का वातावरण अपने आप सतोगुणी हो जाएगा, और सतोगुणी वातावरण हो जाने से हम सुखी हो जाएंगे। भगवान को घर में बिठाएं तो फिर उसको निकट से सेवा करने के लिए हमको पता होना चाहिए कैसे निकट से सेवा करनी है। इसके लिए हमें शास्त्र का अध्ययन करना अति आवश्यक है। सत्वगुण में, सत्वगुण की एक पहचान है कि ज्ञानम, उसको जानकारी होती है। सत्वगुण में ज्ञान होता है, रजोगुण में लोभ होता है, और तमोगुण में प्रमाद आलस होता है। ये परिणाम है तीनों का, प्रमाद आलस तमोगुण, लोभ रजोगुण, ज्ञान सत्वगुण। तो ज्ञान कहां से आएगा? सत्शास्त्र से आएगा, साधु संग से आएगा। तो भगवत गीता, भागवत, रामायण आदि सत्शास्त्र का अध्ययन करना, ये भी भगवान से युक्त होने का साधन है। और जो भगवान से युक्त है उनके साथ युक्त होना, ये भगवान को प्राप्त करने का साधन है। तो भगवान को युक्त होने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, पांच चीजें अति आवश्यक है, भगवत नाम का जप, श्रीमद् भागवत आदि दिव्य ग्रंथों का अध्ययन, भगवान को घर में विराजमान करके श्री विग्रह की प्रेम से पूजा, भगवान के प्रेमी भक्तों का, युक्त भक्तों का संग, और फिर उन स्थानों का भ्रमण जहां भगवान की स्मृति एकदम हो जाए, तीर्थ यात्राओं में उन स्थानों पर जाना जहां जहां भगवान ने अपनी दिव्य लीलाएं की है, वृंदावन आदि। तो ये भगवान से युक्त होना है, और ये सुखी होना है, सुखी होने का साधन बहुत सरलता से। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? उसका फोन तो नहीं है। इस विषय के ऊपर किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? बहुत बड़ा डिफरेंस है सहनशीलता और नम्रता। नम्रता घास है और सहनशीलता पेड़ है। इसका मतलब सहनशीलता से भी नम्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेड़ तो फिर भी खड़ा रहता है लेकिन घास तो नीचे गिरा होता है। नम्रता एक स्टेप सहनशीलता से आगे है। निम्र व्यक्ति ही सहनशील हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए। सहनशील निम्र हो ये जरूरी नहीं है, सहनशील अहंकारी हो सकता है, मैं इतना सारा सहनशील हूं। मतलब निम्र व्यक्ति सहनशील हो सकता है, दोनों में अंतर है। निम्रता सहनशीलता से अधिक अधिक उत्तम लक्षण है। इसके ज्ञान का पहला लक्षण है अमानित्व। ज्ञान का पहला ही लक्षण है अमानित्व, अपने मान की अभिलाषा नहीं करना। वो निम्र व्यक्ति कर सकता है केवल। पहला श्लोक भगवत गीता में ज्ञान का है, अमानित्वम अदम्बित्वम, अहिंसा शांतिर। तो बाद में बाकी लक्षण है, लेकिन पहला लक्षण है अमानिता। और वो यहां भगवत गीता में अमानिता भगवान कहते हैं, वहां चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानी न मान देना। अमानिता का निम्रता का अर्थ है दूसरे सबको मान दो, अपने मान की इच्छा मत रखो, दूसरों को मान दो, सम्मान दो। हम अपने मान की इच्छा करते हैं, स्थापित बाकी सबको अपमानित करते हैं। ये संसार का नियम, बाकी सबको अपमान करो लेकिन मेरा मान बचा रहे, ये दुनिया है। लेकिन इसमें आदमी सुखी नहीं रहता है। जो मान का बहुत बड़ा आदि बन जाता है ना, जो मान लेने का आदि बन जाता है उसको अपमान बहुत बहुत कड़वा लगता है। इंद्र आदि हो गया था मान लेने का ब्रजवासियों से, भगवान श्री कृष्ण ने बंद कर दिया। तो जिसको इंद्र स्वयं जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आया था कि आप अवतार लेके आना, गया था कि नहीं गया था पृथ्वी के साथ ब्रह्मा के साथ गया था, प्रार्थना करने गया था, वही भगवान को न पहचान कर आकाश से गायों को और ब्रजवासियों को डुबाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसका मान रोका गया, सम्मान रोका गया, क्योंकि सम्मान की झूठी आदत पड़ गई थी। दक्ष को सम्मान की आदत थी, मैं जहां जाता हूं सब उठ जाते हैं, तो शंकर उठा क्यों नहीं, इसलिए क्रोध आ गया। तो सम्मान की आदत जिसको होती है उसको सम्मान न मिले तो बहुत बड़ा कष्ट होता है, और सबको सब जगह सम्मान मिले ये संभव नहीं है। इसलिए अमानित आदमी जो होगा वो कहीं दुखी नहीं होगा। सम्मान की बहुत बड़ी हमने ऐसे मेरे को माला नहीं पहनाई उसको पहना दी, तो बहुत बड़ी समस्या होती है। समस्या सम्मान तो इतना परेशानी का कारण बन गया है संसार के अंदर, उसको ये दिया हमको ये दिया, ये बाहर जाके झगड़े होते, इतना देने के बाद भी बुराई ही मिलती है। संसार वाले किसी से भी सुखी नहीं है, कैसे भी आप बनो संसार वाले आपको नहीं कहेंगे अच्छे हो। शंकर जी पार्वती के साथ जा रहे थे दोनों बेल को लेकर, दो एक आदमी सामने आया बुलाए, कुछ बुद्धि नहीं है, इतना बड़ा मोटा बेल है, दोनों पैदल जा रहे हैं। शंकर जी ने सुना निम्र है, बहुत निम्र महात्मा है। पार्वती को कहा आप थक जाओगी, आप चढ़ के चलो मैं पैदल चलता हूँ। दूसरा आदमी सामने आया, निर्लज स्त्री को देखो ऊपर चढ़ के जाती है और पुरुष नीचे जा। अब पार्वती कहती आप चढ़ के चलिए ऊपर, मैं पैदल चलती हूँ। तब सामने वाला आया, देखो तो मर्द है चल नहीं सकता, स्त्री को चला रहा है। तो दोनों ऊपर चढ़ के चले। तब सामने वाला बोलता है नहीं देखो पशु के ऊपर निर्दय दोनों ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, किसी हाल में दुनिया खुश नहीं है, किसी हाल में दुनिया वाले खुश नहीं। अब क्या, अब इसके बाद और कोई ऑप्शन है क्या उसके बाद? इसके बाद यही आखिर हाथ जोड़ ले और क्या करे उसको बेल के उठा के चले। तब तो यही कहेंगे बेल है बेल को उठा के जा रहे हैं। कोई किसी में, हाँ सब आदमी किसी में कोई खुश नहीं हो सकता। इसलिए निम्रता, निम्रता वाले आदमी के कम से कम अपने आप को सुखी रख सकता। तो अब चलने का समय हो रहा है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई जिज्ञासा है तो ठीक है, 43 मिनट हो गए। हाँ बस बोलो, हम आ रहे हैं, 45 मिनट हो गए। हरे कृष्णा। हाँ एक प्रश्न कोई है तो बात कर लेंगे, समय तो हो रहा है।